ये आकाशवाणी दिल्ली है। लोकसभा चुनाव में छठे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल जालसाजी का पर्दाफाश करते हुए दो डॉक्टर सहित 11 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली नगर निगम ने बताया कि राजधानी में वायु और धूल प्रदूषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए राजधानी में विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रवि कपूर। दिल्ली में आज नामांकन वापसी की आखिरी तिथि थी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन वापसी के बाद सातों संसदीय क्षेत्रों में 162 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सर्वाधिक 28, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 26, चांदनी चौक क्षेत्र में 25, पश्चिमी दिल्ली में 24, दक्षिण दिल्ली में 22, पूर्वी दिल्ली में 20 और नई दिल्ली क्षेत्र में 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। राजधानी में इस महीने की 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। विभिन्न दलों के प्रत्याशी और नेता शहर के अलग अलग इलाकों में मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने आज अपने क्षेत्र के कर्दमपुरी इलाके में रोड शो कर लोगों का समर्थन मांगा। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर चुके हैं।
9 बजे से ये सभा चल रही है, पैदल चल रहे हैं लोग, हमें गाड़ी पे खड़ा करा देते हैं और 250 लोगों के साथ लोग अपने घरों पे खड़े होते हैं। बहुत प्यार है लोगों का, बहुत आशीर्वाद है और ये बना रहेगा आशीर्वाद और प्यार और साकार होके रहेगा फिर एक बार मोदी सरकार। लोगों का विश्वास है नरेंद्र मोदी जी में और लोग उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं और हम उनका आभार कर रहे हैं।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज उत्तरी पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के पक्ष में यमुना विहार में प्रचार किया। श्री यादव ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज के पक्ष में किराड़ी और रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रामा विहार में आयोजित बैठक को भी संबोधित किया। इसी क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार योगेंद्र चंडोलिया ने स्वरूप नगर और अलीपुर मंडल में जनसंपर्क किया। नई दिल्ली लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार वांसुरी स्वराज ने ईस्ट पटेल नगर में जनसंपर्क कार्यक्रम किया। इसी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र और सेंट्रल पार्क पहाड़गंज में जनसंपर्क कार्यक्रम किया। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार रामवीर सिंह विधुड़ी ने कालकाजी क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम किया और नेहरू प्लेस में जनसभा को संबोधित किया। इसी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान ने बिजवासन इलाके में जनसंपर्क कार्यक्रम किया। पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने आज घड़ोली गांव में प्रचार किया। वहीं उसी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने बाइक रैली निकालकर लोगों से वोट की अपील की।
आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है, उस शाही का जवाब देना है, उस जेल का जवाब अपने वोट से देना है और देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जो गारंटी मोदी सरकार ने 2014 में दी थी, एक भी गारंटी पूरी करने का काम नहीं किया। अब युवा उनसे रोजगार मांग रहा है, आज लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, उसका जवाब दिल्ली के लोग देंगे।
पश्चिमी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने उत्तम नगर क्षेत्र में रोड शो किया। यहीं से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। अनुपम मिश्र, प्रादेशिक समाचार, दिल्ली।
राजधानी में छठे चरण में इस महीने की 25 तारीख को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए राजधानी में विभिन्न स्थानों पर विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। ये बूथ कश्मीर रेजिडेंट कमीशन, 5 पीआर रोड नई दिल्ली, कश्मीर किसान घर BR2, शालीमार बाग दिल्ली, अर्वाचीन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पॉकेट एफ दिशाद गार्डन और GGSSS पापरावत नजफगढ़ में स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने इन विशेष बूथों पर मतदान करने के पात्र कश्मीरी शरणार्थियों को निशुल्क आने जाने की परिवहन सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। कश्मीरी शरणार्थी चुनावों में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं और चुनाव में अधिक मतदान होने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के कथित विवादित बयान के खिलाफ दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस कार्यालय के समीप प्रदर्शन किया। राजधानी के आईटीओ स्थित प्रदेश कार्यालय के समक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। श्री सचदेवा ने कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस ने श्री पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल जालसाजी का पर्दाफाश करते हुए 2 डॉक्टरों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने वालों से पैसे लेने, अपॉइंटमेंट तय करने के लिए रोगियों से रिश्वत लेने और फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने के आरोप हैं। सीबीआई ने इनसे संबंधित 15 स्थानों पर छापेमारी और एफआईआर दर्ज की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाल ही में डॉक्टर और मेडिकल सप्लायर्स के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पिछले वर्ष सीबीआई ने ऐसे ही एक मामले में सफदरजंग अस्पताल के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कहा है कि दिल्ली स्थित संस्थान के कैफेटेरिया के सभी काउंटरों पर स्मार्ट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि सहित भुगतान केवल डिजिटल तरीके से स्वीकार किए जाएंगे। इसका उद्देश्य लेनदेन को सुव्यवस्थित करने के साथ साथ संस्थान के आधुनिकीकरण और सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप कैशलेस वातावरण को बढ़ावा देना है। एम्स के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास ने कहा कि 100% डिजिटल भुगतान कर्मचारियों, आगंतुकों और हितधारकों के लिए पारदर्शिता, सुरक्षा और सुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है और दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा है। नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद भारत के 140 करोड़ लोगों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी समस्याओं तथा मुद्दों का समाधान करती है। श्री बिरला ने कहा कि प्राचीन काल से भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखना है। अध्यक्ष ने कहा कि संविधान आगे का रास्ता दिखाता है और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवाओं के लाभ के लिए देशभर में अपने संविधान को जाने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने रक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास के लिए आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि देश इस क्षेत्र में औरों पर निर्भर नहीं रह सकता। आज नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं बल्कि देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूत्र है। आत्मनिर्भरता से बुनियादी ढांचे की पूंजीगत लागत कम होती है। यूक्रेन के लिए अमरीका की देर से मिली सहायता का उदाहरण देते हुए श्री अरमाने ने कहा कि विश्व की भू राजनीति में कोई भी विश्वसनीय मित्र नहीं होता और देश दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने रक्षा क्षेत्र के लिए नवाचारी और उन्नत प्रौद्योगिकी निर्मित उपकरणों की आवश्यकता बताई। रक्षा सचिव ने कहा कि यह संगोष्ठी बुनियादी ढांचा विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार विमर्श और सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। डीआरडीओ प्रमुख डॉ समीर वी कामत ने कहा कि विस्फोटकों के संग्रहण के लिए उन्नत तकनीक से निर्मित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneeir.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने वरिष्ठ चालक दल के 25 सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के इनके एक साथ अवकाश पर जाने के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सेवाओं पर असर पड़ा है। अब तक लगभग 80 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। आज भी 85 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं। प्रभावित यात्री पूरा किराया वापस ले सकते या बाद की तिथि के लिए यात्रा कार्यक्रम तय कर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि वह आज मूल सहयोगी कंपनी एयर इंडिया की मदद से 20 यात्रा मार्गों पर 283 उड़ानों का संचालन करेगी। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने कहा है कि राजधानी में वायु और धूल प्रदूषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। एक विज्ञप्ति में निगम ने कहा कि सड़कों और खुले क्षेत्रों में धूल प्रदूषण के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। समर्पित निर्माण अपशिष्ट संग्रह स्थल स्थापित किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली नगर निगम ने बताया कि सभी क्षेत्रों में 52 मैकेनिकल रोड स्वीपर और 225 वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से बड़े पैमाने पर सफाई और पानी का छिड़काव तेज कर दिया गया है। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए शाहदरा और नजफगढ़ क्षेत्र में 8 एमसीडी पार्किंग स्थलों पर इंटरलॉकिंग पेव ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। धूल प्रदूषण से निपटने के लिए कच्ची और टूटी सड़कों की मरम्मत भी की जा रही है, साथ ही विभिन्न सड़कों पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन भी लगाई गई है। निगम ने कहा है कि अप्रैल 2023 से इस साल फरवरी तक 1,22,000 से अधिक पेड़ और 3,00,000 से अधिक झाड़ियां लगाई गई, जिससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिली। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बांग्लादेश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे बुधवार शाम को ढाका पहुंचे और आज सुबह उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनके आधिकारिक आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। बाद में विदेश सचिव ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद से भी उनके कार्यालय में मुलाकात की। देश भर में बढ़ते हुए पारे के साथ गर्मी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। विश्व में अप्रैल का महीना सन 1940 के बाद सबसे गर्म महीना रहा है। समूचे भारत में सामान्य से अधिक तापमान देखा जा रहा है। देश का पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग अप्रैल महीने में भीषण गर्मी की चपेट में रहा। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल महीने में इन क्षेत्रों में सामान्य तापमान में 1.78 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि रही, जो कि अब तक के तापमान वृद्धि में एक रिकॉर्ड है। अभी पूर्वी भारत में बारिश के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत है, लेकिन गुजरात और राजस्थान जैसे पश्चिमी भारत के राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अल नीनो का प्रभाव चाहे कम या लालीना का प्रभाव बढ़े, तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। अभी तक सूचना है कि पश्चिमी राजस्थान का इलाका जैसे जैसलमेर है, चुरू है, गंगानगर है, ये जगह 45 डिग्री से ज्यादा तापमान पर है। इधर दिल्ली में आज आसमान साफ रहा, हालांकि दोपहर में कई जगह तेज हवाएं चलीं। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में हल्के बादल छाए रहने की और कई जगह हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव में छठे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल जालसाजी का पर्दाफाश करते हुए 2 डॉक्टर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली नगर निगम ने बताया कि राजधानी में वायु और धूल प्रदूषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए राजधानी में विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।